यह प्रवचन जीवों पर दया पर आधारित है जो कि श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा दिया गया।
गोपी जाना बाला ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
दया सर्वभूतेषु संतुष्टयेन केन वा सर्वेन्द्रियोपाशंक्या च तुष्यादिषु जनार्दनः ओमज्ञान्तिमिरान्दास्य ज्ञानञ्जनाशलख्या चक्षुरन्मिलितान्येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभिस्ताम् स्थापिताम् येन भूतले स्वयम् रूप कदामयाम् ददाति स्वापदान्तिकम् वन्देऽहम् श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपात् सगराजतम् सहागना रघुनाथन्वितम् तम् सजीवम् सद्वैताम् सवधूतम् परिजना साहित्यम् कृष्णा चैतन्य दैवम् श्रीराधा कृष्णा प्रधान सागना ललिता हे कृष्णा करुणा सिंधु दीना बंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कंता राधा कंता नमोस्तुते सप्ता कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानी सूति देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्ण ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक चुना क्योंकि आज इसका उनके भक्तों के लिए एक बहुत खास दिन है। क्या दिन है आज? December 1st। तो आप कहोगे December 1st इसकी आध्यात्मिक महत्व क्या है? शास्त्र में तो कहानी लिखा, हमारे वैष्णव कैलेंडर में भी आज के विषय में कुछ खास तो नहीं लिखा। पर एक खास दिन है क्योंकि दिसंबर के महीने में हमारे भक्त सारे विश्व में मैराथन करते हैं। किस विषय के ऊपर? ग्रंथों को बांटने के लिए। तो आज का जो हमने श्लोक चुना है भागवतम का, ये श्लोक हमें भागवतम के चौथे स्कंध में प्राप्त होता है और इस श्लोक में नारद मुनि जी प्रचेतस को बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। इस अध्याय में अनेक श्लोक हैं जिनके द्वारा नारद मुनि प्रचेतस को शिक्षा दे रहे हैं। प्रचेतस ने 10,000 साल तक तपस्या का पालन किया था तो नारद मुनि जी उनकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न थे। तो इस श्लोक में नारद मुनि जी बता रहे हैं कि किस प्रकार आप परम भगवान श्री जनार्दन को संतुष्ट कर सकते हो। हम सबका लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम हर कार्य करें भगवान की संतुष्टता और प्रशंसा के लिए। जैसे कि क्षेत्रीय महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा देते हुए कहा कि हमें उन कार्यों को स्वीकार करना चाहिए जो कि भक्ति के लिए अनुकूल हो और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल हो उन्हें हमें त्यागना चाहिए। तो यहां का नारद मुनि जी कह रहे हैं कि किस प्रकार से आप परम भगवान को संतुष्ट कर सकते हो, इस विषय में नारद मुनि जी क्या कहते हैं। सबसे पहले समस्त जीवों पर क्या करें, समस्त जीवों पर दया करें। दूसरा, किसी न किसी प्रकार संतुष्ट रहो। तीसरा, इंद्रियों को वश में रखो। अगर आप इन तीन चीजों का पालन कर सकते हो तो आप अवश्य ही भगवान को प्रसन्न कर सकोगे, उन्हें संतुष्ट कर सकोगे। तो नारद मुनि जी के द्वारा ये उपदेश हमें प्राप्त हो रहा है, एक समस्त जीवों पर दया करो, दूसरा किसी न किसी प्रकार से संतुष्ट रहो, तीसरा इंद्रियों को वश में रखो। प्रभुपाद जी ने भी हमें ये कहा था कि सब प्रकार की सेवाओं में प्रचार की जो सेवा है ये सबसे महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी में प्रभुपाद जी ने कहा प्रीचिंग इज द एसेंस, मतलब सब प्रकार की सेवा, चाहे आप पुजारी हो, चाहे आपकी सेवा हो रसोई बनाना, लाइफ नंबर बनाना, चाहे कुछ भी सेवा हो, सब सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण सेवा है जब आप प्रचार करो भगवान का उपदेश अज्ञान व्यक्तियों को पहुंचाने का प्रयास करो। तो प्रभुपाद जी ने कहा प्रीचिंग इज द एसेंस। तो प्रचार करने की भावना कहां से आती है? असल में जो प्रभुपाद जी ने हमें स्लोगन दिया वो बिल्कुल नारद मुनि जी के इस श्लोक पर निर्भर है। प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में कहा प्रीचिंग इज द एसेंस, बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि सब सेवाओं में प्रचार की सेवा जो है सबसे महत्वपूर्ण है। पर प्रचार का क्या अर्थ और प्रचार का आधार क्या है, प्रचार को किस विषय पर निर्भर रहना चाहिए, उसको निर्भर रहना चाहिए शास्त्रों पर। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा सब प्रकार की सेवाओं में प्रचार सबसे अवश्य है, और प्रचार का अर्थ है ग्रंथों का वितरण, प्रचार का अर्थ है ग्रंथों का वितरण। और ये प्रचार करने की भावना कैसे जागृत होती है ये निर्भर है पवित्रता पर। तो नारद मुनि जी क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, एक इंद्रियों को वश में रखो, दूसरा संतुष्ट रहो हर स्थिति में। तो इंद्रियों को वश में जब रख सकते हो, जब आप ये सीखो कि इंद्रियों का सदुपयोग किस प्रकार से होना चाहिए, जैसे कि नारद मुनि जी नारद पंचरत्न में कहते हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परवेण निर्मलम ऋषिकिन ऋषिकिन सेवन भक्तिर पूछते। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें नारद मुनि जी कह रहे हैं कि तुम सब उपाधियों से मुक्त हो सकते हो अगर तुम इंद्रियों का उपयोग करो ऋषिकेश की सेवा में। तो प्रचार की सेवा, दया सब जीवों पर प्रकट करने की सेवा, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है हर भक्त के लिए। वैष्णव के विषय में कहा गया है वो है परा दुखा दुखी, परा दुखा दुखी। परा दुखा दुखी का क्या अर्थ, परा दुखा दुखी का अर्थ है कि जब वो दूसरे व्यक्तियों को दुखी देखता है तो वो भी दुखी हो जाता है। देखो साधारण स्थिति में जब आप किसी और को दुखी देखते हो तो आप ज्यादा सुखी बन जाते हो, क्यों? आप किसी को दुखी देखते हो तो आप सोचते देखो हम कितनी अच्छी स्थिति में है, दूसरा व्यक्ति दुखी है। सच बात है ना? समझो आप देखते हो व्यापार में कि किसी और का धंधा फेल हो गया और आपका धंधा सफल है तो आप बहुत खुश होते हो, हमारा धंधा ठीक चल रहा है दूसरे का नुकसान में जा रहा है, हम होशियार हैं। पर वैष्णव के विषय में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं परा दुखा दुखी कि दूसरों को दुखी देखकर वो भी दुखी हो जाते हैं। तो आप कहोगे कि दूसरे व्यक्ति तो अपने आप को दुखी नहीं मानते, वो तो हंस रहे हैं, बड़ी मोटरों में घूम रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं, हाँ हर प्रकार की भौतिक सुविधा उनके पास है, तो वो तो ये सोचते हैं कि मैं सुखी हूं। सच बात है, अगर आप प्रचार करने जाओ और किसी को ये कहो कि आप दुखी नजर आते हो, वो क्या कहेगा? नहीं नहीं, मैं तो सुखी हूं। वास्तविकता तो ये है कि अगर भौतिक स्थिति में अगर कोई दुखी हो भी तो पखंड करता है कि मैं खुश हूं, है कि नहीं? तो आप कैसे समझोगे कि वो दुखी है? इस विषय के ऊपर प्रहलाद महाराज का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जो कि हम भागवतम के सातवें स्कंद में प्राप्त करते हैं। प्रहलाद महाराज जी ने कहा, सोचेत तो विमूकसा चेत स इंद्रियार्था माय सुखाय भरम मुदतो विमूढ़ सोचेत तो विमूकसा। जब मैं सोचता हूं कि किस प्रकार भौतिकवादी व्यक्ति दुख की स्थिति को बदल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं सुख प्राप्त करने का, तो ये देखकर सोचकर मुझे अत्यंत दुख पहुंचता है। और प्रहलाद महाराज जी ने श्लोक कब कहा? कल परसों नहीं, हजारों साल पूर्व। और उन्होंने जो उपदेश दिया अपने साथियों को, वो उपदेश उन्होंने प्राप्त किया था किससे? नारद मुनि से। तो हजारों 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 साल पूर्व भी ये श्लोक नारद प्रहलाद महाराज जी ने कहा है कि भौतिकवादी व्यक्ति प्रयास करते हैं दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने के लिए। और आज जो विज्ञानियों का प्रयास है, वो विज्ञानियों का प्रयास है अवश्य ही समाज की कठिनाइयों को कम करने के लिए। जैसे कि अगर कोई गहरी बीमारी हो तो ये नहीं कहेंगे कि ये काम बंद करो गलत काम, वो कहेंगे हम इसका उपाय ढूंढेंगे। जैसे एक बीमारी है एड्स, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में भी एड्स, अच्छा अंग्रेजी शब्द है, तो एड्स है, बहुत गहरी बीमारी है और इससे 90% लोगों की मृत्यु हो जाती है, आज नहीं तो कल, जिसको ये बीमारी हो। और ये बीमारी क्यों होती है? बिना भेदभाव के भोगरा से वगैरह करो तो ये बीमारी हो जाती है। तो ये नहीं कहेंगे कि ये गलत काम मत करो। सारे पश्चिम देशों में सरकार करोड़ों करोड़ों डॉलर खर्च रही है एड्स का उपाय ढूंढने के लिए, और हर एक थोड़े महीने बाद कोई कंपनी कह देती है हम एड्स का उपाय ढूंढने वाले हैं। ये नहीं कहेंगे कि गलत काम बंद करो, पर वो कहेंगे नहीं गलत काम करते जाओ पर हम तुम्हें उपाय दे देंगे। तो यही है प्रयास भौतिकवादियों का कि दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलना। तो जो वैष्णव भक्त है, असल में हम सब अगर सोचें कि हम वैष्णव बन गए हैं तो वो भी एक रूप से गलत विचार है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम प्रयास कर रहे हैं वैष्णव बनने के लिए, या दूसरे शब्दों में हम ये सोच सकते हैं कि हम उस मार्ग पर प्रवेश कर चुके हैं कि अगर हम इस मार्ग के सब विधियों का पालन करेंगे तो अंत में हम वैष्णव बन जाएंगे। पर अगर हम ये सोचें कि 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में हम वैष्णव बन गए तो ये गलत है। तो हमें यही सोचना चाहिए कि हम प्रयास कर रहे हैं वैष्णव बनने के लिए। तो वैष्णव बनने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं तो वैष्णव का यह विचार रहना चाहिए कि हमने पूरे विश्व को सुखी बनाना है। या नारद मुनि जी कह रहे हैं समस्त जीवों पर दया करो। इसलिए जो वैष्णव है एक चींटी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। जैसे कि आप भागवतम में पढ़ते हो, जब भारत महाराज रघुगुना की पलकी उठा रहे थे, महाराज रघुगुना को देर हो रही थी तो उन्होंने अपने पलकी उठाने वालों को कहा कि तेजी से ले जाओ मुझे, तो बाकी तो दौड़ने लगे पर महाराज जदभारत कदम भी पृथ्वी पर नहीं रखते थे ये देखे बिना कि कोई चीटी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समस्त जीवों पर दया प्रकट कर रहे थे। तो समस्त जीवों पर हम दया कैसे प्रकट कर सकते हैं? हम दया प्रकट कर सकते हैं समस्त जीवों पर उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देकर। जैसे कि हमारे परम गुरु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी वो कहते थे कि अगर इस विश्व में किसी चीज की कमी है तो एक ही चीज की कमी है, क्या है वो? आध्यात्मिक ज्ञान की कमी, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। अगर इस विश्व में किसी चीज की कमी है तो सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है, तो इस कमी को कौन दूर करेगा? हमारे राजनीतिक नेता? हाँ नहीं, इस कमी को वही व्यक्ति दूर कर सकते हैं जिन्होंने भगवान के शिक्षा को स्वीकार किया है और जो कि भगवान के शिक्षा के आधार पर जीवन को बिताने का प्रयास करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने ग्रंथों के वितरण पर बहुत ज्यादा बल दिया। प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो उन्होंने सबसे पहले शास्त्र में तो हम पढ़ते हैं कि इस विषय पर बल है क्या के प्रचार करने का, जैसे कि भगवद गीता के 18वें अध्याय में हमें गीता का सार प्राप्त होता है। तो इस अध्याय में भगवान अंत में क्या कहते हैं, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? जो मेरा प्रचार करता, या इदम परमम गुह्यम, और इससे ज्यादा प्रिय ना कोई भक्त इतिहास में हुआ है ना होगा। ये भगवान की वाणी है कि सब भक्तों में सबसे प्रिय वो है जो मेरा प्रचार करता है, और इसे ज्यादा ना कोई प्रिय हुआ है ना होगा। चैतन्य चरितमृत में बड़ा सुंदर वार्तालाप है चैतन्य महाप्रभु जी और हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर तो थे नामाचार्य। सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि कई व्यक्ति हैं जो प्रचार करते हैं और जिनका आचार नहीं, कई हैं जिनका आचार है पर प्रचार नहीं करते, पर आप दोनों कर रहे हो। हरिदास ठाकुर उनका आचरण बिल्कुल शुद्ध था और वो हरि नाम के साथ जुड़े हुए थे। तो जैसे हरिदास ठाकुर ने उस वैश्य को भी पवित्र बना दिया और वैश्य भी भक्त बन गई। तो हरिदास ठाकुर को एक समय चैतन्य महाप्रभु जी मिलने गए। ऐसे तो चैतन्य महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर को मिलने रोज जाते थे, लेकिन हरिदास ठाकुर नामाचार्य होते हुए भी, क्योंकि उन्होंने मुसलमान खानदान में जन्म लिया था, वो जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ का दर्शन लेने नहीं जाते थे, पर उनकी भजन कुटी जो है जगन्नाथपुरी मंदिर के बिल्कुल पास में थी, तो भगवान स्वयं उनको मिलने रोज जाते थे। चैतन्य महाप्रभु जी रोज जगन्नाथ जी का दर्शन करके उनके पास जाते थे। तो हरिदास ठाकुर से चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, हरिदास इन यावनों का सुधार कैसे होगा? यावन किसे कहा जाता है? ये बड़ा सुंदर श्लोक है चैतन्य चरितमृत में। यह सवारा कौन माते है बे निस्तारा, तारा हेतु ना देखे ए दुखा अपारा। हरिदास किस प्रकार इन यावनों का उद्धार होगा? मैं दुखी हूं ये सोचते हुए कि किस प्रकार इन यावनों का उद्धार होगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि यावनों का ये अर्थ नहीं कि जिन्होंने पश्चिम देश में जन्म लिया हो। हम तो भारत में सोचते हैं यावन हम नेचर तो सब पश्चिम देश के, हम तो सब शुद्ध खानदान के हैं। यावन हम नेचर से अर्थ है जो कि शास्त्रीय विधियों के आधार पर जीवन को नहीं बिता रहा। बेशक आपका जन्म हुआ हो बड़े ब्राह्मण खानदान में, पर आपका आचरण और विधि के अनुसार नहीं चल रहे, तो आपको शास्त्र के अनुसार यावन और नेचर माना जाएगा। जब प्रभुपाद जी ने प्रचार करके अपने विदेशी भक्तों को ब्राह्मण बुला बनाया, तो कई भारतीयों ने कहा कि भक्तिदानंद स्वामी हमारे धर्म को नष्ट कर रहे, विदेशियों को ब्राह्मण बना दिया। तो चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुना कर्मा विवाह का सहा, गुणों के आधार पर व्यक्ति को ब्राह्मण हम मानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि किस प्रकार इन यामनों और नेचरों का उद्धार होगा? हरिदास वह तो चिंता में हो कैसे उपाय होगा, मुझे तो पता ही नहीं कैसे होगा। ये भगवान की निम्रता थी। तो हरिदास ने कहा, प्रभु चिंता ना करिया, प्रभु आप चिंता मत करो, इन यावना का उद्धार होगा। कैसे होगा? हा राम बालिका नाम आभास। भगवान के देव नाम का उच्चारण लेकर इन यावना का उद्धार होगा। तो प्रभुपाद जी इन श्लोकों में के तात्पर्य में कह रहे हैं कि जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी ने चिंता प्रकट की, जिस प्रकार हरिदास ने कहा भगवान से, क्या आप चिंता मत करो, भगवान चिंता में थे, हरिदास ने कहा नहीं आप चिंता मत करो, हरि के नाम का उच्चारण लेकर इन यावना का उद्धार होगा। तो प्रभुपाद जी ने समझाया है अनेक श्लोक इन श्लोकों के तात्पर्य के द्वारा कि वैष्णव और भक्त का सबसे प्रथम कार्य यह होता है कि वो चिंता करे किस प्रकार दूसरों का उद्धार होगा, सुधार होगा। भागवत में कथा है महाराज रंती देवा की, आजकल जो हमारे राजनीतिक नेता हैं उनमें तो कोई आध्यात्मिक चिंता ही नहीं, पर प्राचीन समय के जो नेता थे वो भगवान के भक्त होते थे, राजा और ऋषि, राज ऋषि। तो महाराज रंती देवा ने एक समय व्रत रखा था लगभग 48 दिनों का, और वह तो तोड़ने ही वाले थे कुछ प्रसाद के साथ जो कि दूध चीनी और पानी से बना था, कि भूखा ब्राह्मण आ गया उनके महल में और कहने लगा हे राजा मैं भूखा हूं, तुम्हारी यह जिम्मेदारी है कि मेरी भूख को दूर करो। आज आप कह सकते हो ऐसे अपने नेताओं को, आज तो उनके पास भी आप नहीं जा सकते, जब नेताओं की मोटर गुजरती है तो चारों तरफ से सड़कें बंद कर देते हैं ना। पर प्राचीन समय में तो आप किसी समय भी राजा के महल में जा सकते थे और अपनी समस्या उन्हें सुना सकते थे। तो राजा ने दे दिया थोड़ा सा प्रसाद जो स्वीकार करने जा रहे थे। फिर एक और भूखा व्यक्ति आया, तीसरा भूखा व्यक्ति चंदाला, तो चौथा एक प्यासा व्यक्ति आया, जो पानी था वो भी राजा को देना पड़ा, असल में देवता राजा की परीक्षा ले रहे थे। तो सारा अन्न प्रसाद पानी सब चले गया। फिर इस राजा ने एक बहुत ही खूबसूरत स्तुति अर्पण की भगवान को, उन्होंने कहा मैं काम है हम गतम ईश्वरत परम, हे भगवान मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना योगिक सिद्धियां ना किसी प्रकार की सुविधा, अंतस्थित इन भवंती या दुखा, आप मुझे सबका कष्ट जो है दूसरे लोगों का जो कोटा है कष्ट का वो मेरे अकाउंट मेरे को सौंप दो, दूसरों को सुखी बनाओ मुझे दुखी रहने दो। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये बुद्धि विचार भावना हम ऐसा भक्तों को रखने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार चैतन्य चरितमृत में हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी के पास एक समय एक भक्त आए जिनका नाम था वासुदेव दत्त। अक्सर हम तो भगवान के पास जाते हैं अपनी शॉपिंग लिस्ट लेकर, हमें धन भी चाहिए, नौकरी चाहिए, धंधा चाहिए, अच्छे नंबर चाहिए बच्चों के लिए, सुंदर पत्नी चाहिए, अमेरिका की टिकट चाहिए वगैरह। पर वासुदेव दत्त गए चैतन्य महाप्रभु जी के पास और कहने लगे मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा बोलो मांगो। नहीं नहीं नहीं, मांगने से पहले आप ये वादा करो कि जो मैं मांगूंगा वो आप दोगे। क्या पहले आप वादा करो कि मैं जो मांगूंगा वो आप दोगे मुझे। तो चैतन्य महाप्रभु जी नहीं नहीं मांगो मांगो, नहीं नहीं पहले वादा करो। तो क्या मांगा उन्होंने, सब पतितों का उद्धार कर दो और मैं बहुत इंसान में भटकते रहूंगा जब तक इन सब का पाप का कोटा समाप्त नहीं हो जाए। देखो ये थी वासुदेव दत्त की प्रार्थना भगवान से, आप दूसरों का उद्धार करो पर मुझे खरफने दो, भटकने दो, कष्ट भुगतने दो। तो इस प्रकार हमारे शास्त्रों में अनेक स्थानों में इस विषय पर बल दिया गया है क्या कि हमें प्रचार में जुड़ना चाहिए। तो अगर प्रचार पर बल दिया जाता है इसलिए क्योंकि परम भगवान ने स्वयं इस पर बल दिया। आखिर जो गीता का श्लोक है याइदम परमम गुह्यम, ये कल तो नहीं बोला था भगवान ने, गीता का उपदेश भगवान ने सूर्य के देवता विवासवान को दिया था करोड़ों साल पूर्व, जो करोड़ों साल पूर्व भी भगवान ने इसकी आवश्यकता। और जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में आए तो उन्होंने हमें क्या कहा, जाए जाको ताए कहो, जिसे भी तुम मिलो उसे क्या कहो, कृष्णा उपदेश। तो इसी विचार को लेते हुए गोस्वामियों ने वैदिक भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना की और प्राचीन समय में जिन्होंने किताबों को छापा और बांटा। तो पहले सबसे बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे हमारी संप्रदाय में ठाकुर भक्ति विनोद, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन पर, टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य लाइफ एंड प्रीसेप्ट्स। तो ठाकुर भक्ति विनोद जी ने ये चैतन्य महाप्रभु जी के ऊपर किताब विश्व के सब बड़े महाविद्यालयों को भेजा। हमें याद है कि जब हमने 1968 में निकल यूनिवर्सिटी में गए थे तो उस यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में भी एक किताब थी जो कि ठाकुर भक्ति विनोद जी ने भेजा था 1896 में, उसी साल जबकि प्रभुपाद जी ने जन्म लिया था। तो ठाकुर भक्ति विनोद ने ग्रंथ सेवा का वितरण आरंभ किया, पर उन्होंने अकेले थे, अब तो जानते हो ठाकुर भक्ति विनोद जी, तो उन्होंने स्वयं किताबों को भेजा विश्व की बड़ी बड़ी महाविद्यालयों में। फिर उन्होंने अपने बेटे भक्ति सिद्धांत जी को यह आदेश दिया कि तुम ग्रंथों का लिखो और वितरण करो। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने इस विषय पर बल दिया क्या, ग्रंथों को लिखना और बात। एक समय भक्ति सिद्धांत जी प्रभुपाद जी के साथ राधा कुंड में, और भक्ति सिद्धांत जी ब्रजमंडल परिक्रम ले जा रहे थे तो प्रभुपाद जी उन्हें मिलने आए थे राधा कुंड में। तो भक्ति सिद्धांत जी ने कहा प्रभुपाद जी से, अगर भगवान तुम्हें कभी संपत्ति दे तो तुम क्या करना, कतीबों को किताबों को प्रकाशित करना और बांटना। और एक समय प्रभुपाद जी बैठे थे भक्ति सिद्धांत जी के साथ कलकत्ता में, तो भक्ति सिद्धांत जी ने एक मृदंगा की ड्रॉइंग की कागज पर, और प्रभुपाद जी को कहा हमका जो कार्य है ये है बृहद मृदंगा। बृहद मृदंगा क्यों, क्योंकि साधारण मृदंगा की आवाज थोड़ी दूर तक ही जा सकती है, चाहे आप कितना भी बड़ा एम्पलीफायर ले आओ, पर जब किताबों को आप बांटते हो तो उसकी आवाज 10,000 मील भी जा सकती है। जैसे आज सुबह हम एक पत्र पढ़ रहे थे कि प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद जी को एक पोर्चुगल से 11 साल के बच्चे की छुट्टी आई थी, 11 साल का बालक था, और उस समय पोर्चुगीज में, पोर्चुगल में हमारा कोई मंदिर नहीं था, पर किसी व्यक्ति ने एक भगवत गीता पहुंचा दी थी इस लड़के को, 11 साल का लड़का, और 11 साल में वो भक्त बन गया। और उसका बाप अमेरिका आ रहा था तो उसने अपने बाप को कहा अमेरिका से ये सब किताबें मेरे लिए खरीद कर लाओ। तो ये बाप प्रभुपाद जी को मिला और प्रभुपाद से कहा कि मेरा बेटा आपकी गीता पढ़ता है, उसने मुझे कहा कि अमेरिका से सब किताबें लेके आओ, क्योंकि उस समय पोर्चुगीज में कोई मंदिर नहीं था। तो प्रभुपाद जी ने यह उदाहरण लिया भक्तों को ये बताने के लिए कि किस प्रकार ये ग्रंथों का जो वितरण है ये है बृहद मृदंगा। फिर प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों को लिखकर कहा ये जो ग्रंथों का वितरण है ये है बृहद कीर्तन। हम कीर्तन करते मंदिर में 4 भक्त 6 भक्त 8 भक्त, तो यह बृहद कीर्तन, बृहद मृदंगा बृहद कीर्तन, क्योंकि जब आप ग्रंथों को बांटते हो तो इसकी आवाज बहुत दूर दूर तक जाती है। तो ग्रंथों को बांटना यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। हम जब लाइफ मेंबरशिप भी बनाते हैं, प्रभुपाद जी ने लाइफ मेंबरशिप का प्रोग्राम की स्थापना की थी, एक रूप से स्थापना की थी इस भाव से कि इसके द्वारा धन की प्राप्ति होगी और धन का उपयोग किया जा सकता है मंदिरों को बनाने के लिए, प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए। पर प्रभुपाद जी ने किए कहा कि जो मेंबर बने उन्हें किताबें दो, कृष्णा बुक, नेक्टर डिवोशन, टीएलसी, भगवत गीता, क्योंकि जब लोग ये किताबों को पढ़ेंगे तो इसके द्वारा उनका जीवन सुधरेगा, जीवन में परिवर्तन आएगा। तो ये जो दिसंबर का महीना है और ये शुरू हो रहा है आज दिसंबर 1 के साथ, ये दिसंबर का महीना पूरे इस्कॉन में जाना जाता है मैराथन का महीना। आज अगर आप विदेश में किसी भी मंदिर को फोन करोगे ना तो कोई फोन का जवाब ही नहीं देगा। आज से विदेशों में, बॉम्बे में भी, भारत में भी कई मंदिरों में पूरा मैराथन किया जाता है। तो सुबह से रात तक भक्त प्रयास करते हैं अधिक से अधिक मात्रा में इन ग्रंथों को बांटने के लिए, जैसे कि भगवान ने अर्जुन से क्या कहा, तुम युद्ध में लड़ो मेरी खुशी के, तुम निमित्त मात्र बनो। तो हम प्रयास करेंगे तो सफलता प्राप्त करेंगे। अगर हम बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि प्रचार में सफलता प्राप्त हो जाएगी तो वो गलत है। गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। मदर यशोदा ने भी प्रयास किया था भगवान को बांधने के लिए, तो फिर भगवान ने अंत में क्या कहा कि मेरी माता इतनी प्रयास कर रही है मुझे बांधने के लिए, अब निराश है तो उसे मुझे बांधने दो। तो भगवान जब देखते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, उनकी शिक्षा आखिर इन ग्रंथों में है क्या, इन ग्रंथों में है भगवान की वाणी, और भगवान की वाणी के आधार पर ही समाज सुखी हो सकता है। ये विचार बिना किसी शंका के हमें रहना चाहिए कि कोई भौतिक सफलता के द्वारा सुख की प्राप्ति नहीं होगी। चाहे किसी के पास 100 मोटरें हो, आप भौतिक सुविधाओं से असली सुख नहीं प्राप्त कर सकते। असली सुख केवल जब प्राप्त कर सकते हो जबकि आप परम भगवान से जुड़ने का प्रयास करो। तो भारत में तो दिसंबर के महीने में एक खास आध्यात्मिक महत्व भी है, हम इसे जानते हैं गीता जयंती का महीने। आप शायद जानना चाहोगे कि क्या कारण है कि हम ये मैराथन दिसंबर के महीने में करते हैं। असल में ये मैराथन शुरू हुआ था पहले एक दिन के मैराथन के साथ, शुरू में पश्चिम देशों में, अमेरिका में मैराथन शुरू हुआ था। अमेरिका में क्रिसमस के समय, क्रिसमस से पहले जो दुकानें हैं वो बहुत देर तक खुली रहती हैं, 9 बजे तक, 10 बजे तक। तो पापा जी तो हर पत्र में भक्तों को लिख रहे थे कि अगर तुम मुझे संतोष करना चाहते हो तो ग्रंथों को बांटो। तो पापा जी तो हर पत्र में भक्तों को यही लिखते थे, इफ यू वॉन्ट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, अगर तुम मुझे संतोष करना चाहते हो तो ग्रंथों का वितरण करो। तो भक्त ये सोच रहे थे कि पापा जी कह रहे हैं बांटो बांटो बांटो, कैसे बांटे क्योंकि उन दिनों में तो भक्तों के इतना अभ्यास नहीं था। तो फिर भक्तों ने, एक भक्त ने देखा कि क्रिसमस के समय दुकानें ज्यादा देर तक खुलती हैं, तो उन्होंने ज्यादा देर तक वो दुकानों के सामने खड़े हो गए। तो एक दिन के मैराथन से ये 3 दिन का मैराथन बना, 3 दिन के मैराथन से 1 हफ्ते का मैराथन बना, और 1 हफ्ते के मैराथन से अभी कई महीनों से, कई सालों से पूरे महीने का मैराथन भक्त ने कर लिया। क्योंकि भक्त तो हर चीज का लाभ उठाते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने का। तो ये शुरू हुआ था दिसंबर के महीने में, क्रिसमस से संबंधित था क्योंकि क्रिसमस के समय पश्चिम देशों में दुकानें वगैरह देर तक खुली रहती हैं, और क्योंकि तो भक्तों ने इसका लाभ उठाया, दुकानों के सामने लोगों को क्रिसमस मूड का लाभ उठाकर ग्रंथों को बांटने के लिए, जैसे हम दिवाली के समय लोगों को प्रेजेंट्स वगैरह देते हैं तो पश्चिम देशों में क्रिसमस के समय देते हैं। तो इस भावना, इस कारण ये क्रिसमस दिसंबर के महीने में शुरू हुआ था। और फिर भारत में तो आप कह सकते हो कि गीता जयंती के समय के उपलक्ष में हम ये प्रयास करें कि अधिक से अधिक मात्रा में ग्रंथों को बांटा जाए। तो अगर हम भक्त प्रयास करेंगे इन ग्रंथों को बांटने के लिए तो अवश्य ही भगवान सफलता देंगे। प्रभुपाद जी ने कहा था कि इन ग्रंथों में पूरा ज्ञान है जिसके द्वारा हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो। प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इन ग्रंथों का एक श्लोक भी समझ जाए तो उसका जीवन सफल हो सकता है। और प्रभुपाद जी की इच्छा थी, प्रभुपाद जी का एक विचार था कि भारत भूमि में सबसे ज्यादा वितरण हो सकता है ग्रंथों का। आपको शायद पता होगा कि जब प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, वो दिल्ली में आते थे ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिए, पर उस समय प्रभुपाद जी ग्रंथों का अनुवाद करते थे, फिर दिल्ली में आते थे भीख मांगने के लिए, लोगों से चंदा मांगने के लिए, जैसे आप लोग चंदा मांगने जाते हो प्रभुपाद जी भी जाते थे, फिर चंदा मांगकर प्रभुपाद जी जाते थे कागज खरीदने के लिए, फिर छपाई करने के लिए, फिर वो किताबों को बाइंड कराने के लिए खुद कराते थे अपनी आंखों के अंदर देखकर, और फिर जब किताबें तैयार हो जाती थी तो क्या करते थे, बांटने के लिए जाते थे। और आपको शायद पता होगा कि एक समय गर्मी के मौसम में प्रभुपाद जी कनॉट प्लेस में बांट रहे थे और वो बेहोश हो गए, सनस्ट्रोक हो गया, लू लग गई, और जैसे ही होश में आए उन्होंने फिर से शुरू कर दिया। जब कोई भी आता था प्रभुपाद जी को मिलने के लिए, प्रभुपाद जी सबसे ज्यादा बल देते थे उनको ग्रंथों का उपदेश देने, ग्रंथ दिखाने के लिए। और प्रभुपाद जी ने अंतिम दिनों में ग्रंथों का भी अनुवाद किया, जैसे कि 10वें सेकंड का, जब प्रभुपाद जी 10वें सेकंड के तीसरे भाग का जब प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे थे, भौतिक दृष्टि से उस समय उनकी सेहत बहुत ही कमजोर थी, बैठने की भी योग्यता नहीं थी। एक भक्त संस्कृत के श्लोकों को पढ़ रहा था, दूसरा भक्त, दूसरे दो भक्त उनको बैठने में सहयोग दे रहे थे, एक और भक्त ने माइक्रोफोन पकड़ा हुआ था, और इन सब भक्तों का सहयोग लेकर प्रभुपाद जी धीमे धीमे इन अनुवाद कर रहे थे और तात्पर्य सुना रहे थे। एक समय कई साल पहले प्रभुपाद जी जब तात्पर्य, आपको शायद पता होगा कि विदेशों में जाने से पहले, विदेश आने से पहले प्रभुपाद जी ने ग्रंथों का अनुवाद किया हाथ से, पर विदेश में जाने के बाद प्रभुपाद जी ने डिक्टाफोन का उपयोग करना आरंभ किया और प्रभुपाद जी डिक्टाफोन में डिक्टेट करते थे। तो जब प्रभुपाद जी डिक्टेट करते थे, एक समय कर रहे थे, तो एक शब्द बोल रहे थे फिर रुक गए, एक शब्द बोला फिर रुक गए, तो उनके सेक्रेटरी ने उनसे पूछा कि आप इतने धीमे धीमे क्यों डिक्टेट करते हो, क्योंकि जैसे अगर आप पत्र लिख रहे हो आप तो शुरू करते हो और समाप्त करते हो, नियम थोड़ा सोचते हो, ये थोड़ी कि हर शब्द लिखकर सोचते हो। तो प्रभुपाद ने कहा कि हर शब्द जो इन ग्रंथों में मैं डाल रहा हूं भविष्य के 10,000 सालों तक लोग पढ़ेंगे, तो मुझे हर शब्द इन ग्रंथों में सोचकर डालना है। तो इन ग्रंथों में प्रभुपाद जी ने पूरा ज्ञान दिया है भविष्य के 10,000 सालों के लिए। अभी हम भक्तों की जिम्मेदारी बनती है कि हम इन ग्रंथों को आगे पहुंचाएं। तो आप सोचोगे कि लोग तो इसके महत्व को नहीं पहचान पाते, तो हम कैसे लोगों को प्रभावित करें? अगर आप में उत्साह रहेगा तो आप दूसरों को प्रभावित कर पाओगे, अगर आप क्लास में सोओगे तो अवश्य ही पैसे नहीं उठता दूसरों को प्रभावित करने का, अगर आप में उत्साह रहेगा तो आप प्रभावित करोगे। प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे ग्रंथ बिकते हैं मेरे भक्तों के उत्साह के कारण। तो सबसे पहले तो आपके हृदय में बिना किसी शंका के ये विचार बैठना चाहिए कि इन ग्रंथों के अलावा और कोई उपाय नहीं है, और भगवत गीता, कृष्ण बुक, ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इस समय हमने गीता दिल्ली में छापी है, दिल्ली वाले भक्त कह रहे थे बॉम्बे से मंगाने में देर लगती है तो आप दिल्ली में छाप। तो आप भक्तों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो परिचय दिया जा रहा था, ये भूमिका दी जा रही थी, इसका भाव एक ही था कि आप सारे भक्त इस मंदिर के बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में जुड़िए। ये नहीं कि ये जिम्मेदारी केवल फुल टाइम संकीर्तन भक्तों की है, ये जिम्मेदारी हर भक्त की है, जीबीसी हो, प्रेसिडेंट हो, लाइफ मेंबरशिप पे जो, ये सब भक्तों की जिम्मेदारी है कि हम इस महीने में प्रयास करें अधिक से अधिक ग्रंथों को बांटने के लिए। बॉम्बे मंदिर ये साल, ये महीने कम से कम 1.25 लाख गीता बांटेगा, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख से 1.5 लाख उनका कोटा है बांटने का, और सब प्रयास कर रहे हैं, तो मैं ये विनती करना चाहता हूं आप भक्तों से कि आप सब मैराथन शेड्यूल में जाइए अभी। तो मतलब कहने का ये है कि आप सब कृपा करके प्रयास करो ये सेवा में जुड़ने के लिए। जो पुजारी हैं उन्हें भी प्रयास करना चाहिए। जैसे बॉम्बे मंदिर में राधा राजबिहारी के ऑल्टर में किताबों का टेबल रहता है, तो पुजारी भी वहां बैठकर सारा दिन जो भी आए वो पुजारी लोग भी प्रयास करते हैं ग्रंथों को बांटने में। हर भक्त को जुड़ना चाहिए इस मैराथन के साथ। जो लाइफ मेंबरशिप के भक्त हैं वो तो लाइफ मेंबरशिप भी करेंगे और किताबों को भी बांटेंगे, और जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स है दूसरे भक्त हैं। एक चीज मैंने देखा है, हाँ बुरा नहीं मानना, कि दिसंबर के महीने में जो आलसी भक्त हैं उनमें भी उत्साह आ जाता है, क्योंकि कई भक्त हैं सारे इस घर में, कई तो है ना आलसी, एक घंटे का है, बस दिसंबर के महीने में जो आलसी भक्त हैं उनमें भी उत्साह बढ़ जाता है, क्योंकि सब जानते हैं कि हमने जरूर प्रयास करना है इन ग्रंथों को बांटने के लिए। तो मैं आप भक्तों से ये विनती करना चाहता हूं कि आप सब प्रयास कीजिए इस मैराथन में जुड़ने के लिए।
हरे कृष्णा।